Kalpa Radio exclusive interviews.
मैं लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर, मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ गतौरा बिलासपुर।
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, इस क्रम में हमने बातचीत की लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर से। एक लंबी बातचीत है जिसको हम आपको श्रृंखला के रूप में सुनवाएंगे। रवि प्रकाश राठौर मुख्य रूप से बिलासपुर के पास के एक गांव गतौरा से जुड़े हुए हैं और उनको आज की तारीख में इंडियन आर्मी में लद्दाख में पोस्टिंग मिले 1 महीना हुआ है और बस वो अपनी इस नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। मातृका साहू ने एक लंबी बातचीत की लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर से कि किस तरह से उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे वो सैनिक स्कूल अंबिकापुर से नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी तक पहुँचे, उनका ये सफ़र कैसा रहा। बहुत सारी रोचक बातों घटनाओं को समेटने वाला ये इंटरव्यू आप लोग ज़रूर सुनिए, पूरा सुनिए। तो आइए मिलते हैं लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर से और सुनते हैं बातचीत का पहला भाग।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
आपने अपने नाम के आगे लगाया लेफ्टिनेंट।
जी,
लेफ्टिनेंट का मतलब क्या होता है?
बेसिकली मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। मैं इंडियन आर्मी का एक सर्विंग ऑफिसर हूँ, मुझे ज्वाइन किए अब 1 महीना हो रहा है। और लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी का सबसे छोटा रैंक होता है एज अ ऑफिसर जब हम एंट्री लेते हैं इंडियन आर्मी में। तब
इसका मतलब ये है कि आपने अभी अभी ज्वाइन किया।
जी,
इससे पहले आपने एग्जाम दिलाया था?
जी एक्चुअली इसका प्रोसीजर अगर मैं डेट बैक करूँ तो इट इज़ लाइक अ 4 ईयर प्रोसीजर फॉर मी। मैं सैनिक स्कूल से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई सैनिक स्कूल अंबिकापुर से की है, जो मैंने आज से 11 साल पहले 2011 में 6वीं कक्षा में ज्वाइन कर लिया था।
जी,
7 साल वहाँ पढ़ाई करने के बाद 2019 जनवरी में मैंने नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला, ये पूरी दुनिया का एकमात्र संस्थान है जहाँ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के होने वाले ऑफिसर्स एक साथ ट्रेन होते हैं। 3 साल वहाँ की ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि मैं आर्मी का ट्रेनी था तो इसलिए मेरे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन कराया गया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भारत देश को, भारतीय सेना, भारतीय थल सेना को ऑफिसर्स प्रदान करती है और वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग कम्प्लीट करने के बाद 10 दिसंबर 2022 को मैं कमीशन हुआ।
IMA देहरादून, सिर्फ IMA देहरादून ही हमारे यहाँ पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही क्या वो मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी है या फिर इसके अलावा कोई और एकेडमी है?
नहीं नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि हम किसी भी चीज़ को डायरेक्ट ट्रेनिंग करके नहीं कर सकते, तो इसके लिए पहले NDA जैसा सिर्फ एक संस्थान है।
हाँ।
उसके बाद अगर हम NDA से, अगर मान लीजिए मैं एयरफोर्स का बनने वाला ऑफिसर होता तो एयरफोर्स के लिए सिर्फ एक संस्थान है, वो हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी। अगर मैं नेवी का होता तो वह इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो एक एजिमाला नाम की जगह पर है, वो केरला में।
हाँ।
और आर्मी, क्योंकि भारत की आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है चाइना के बाद,
जी।
तो हमारे पास ऐसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे कुल 3 संस्थान है। एक है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, दूसरा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, तीसरा है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया।
तो इसके लिए आपने कोई भी प्रारंभिक परीक्षा नहीं दिलाई?
नहीं, इसके लिए एक प्रारंभिक परीक्षा दिलाना ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम फौज में जाना चाहें तो उसके तरीके लाखों हैं।
जी,
मैंने एक तरीका चुना, कोई और दूसरा तरीका भी चुन सकता है। जैसे मैंने जो तरीका चुना वो है UPSC की तरफ से। UPSC, जैसे हम जानते हैं कि UPSC का सबसे फेमस एग्ज़ाम जो बोलते हैं वो है सर्विसेज का, IAS या IPS बनने वाला।
जी,
मेरा जो एग्ज़ाम था वो है NDA NA एग्ज़ाम, नेशनल डिफेंस अकेडमी नेवल अकेडमी एग्ज़ाम। उसकी जो वैलिडिटी होती है उम्र की, वो है 16.5 से 19 साल तक।
जी।
और उस बीच में मैं एज अ इंटरमीडिएट पास, मतलब 12th पास करके या 12th रनिंग में उसको एग्ज़ाम को दे सकता हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ फिर मुझे SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नाम के एक इंटरव्यू को पास करना होता है। ऐसा माना जाता है कि वो इंटरव्यू अभी एट प्रेजेंट दुनिया में सबसे हार्ड होती है।
हाँ।
5 दिन की इंटरव्यू होती है, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आपसे बस कराया जाएगा, आप करते जाएंगे, पांचवें दिन आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। बेसिकली अगर मैं अपना बताऊं तो मैं खुद पहली बार पास नहीं कर पाया था, और दूसरी बार जब मैं गया तो मेरे बैच में कुल 197 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो फर्स्ट डे के स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब उसका प्रोसीजर पहला दिन का जो होता है, उसके हिसाब से हम टोटल 29 लोग ही पास हो पाए थे पहले दिन, और बाकी 197 में जितने 29 को छोड़ के जितने बचे वो सारे वापस भेज दिए गए थे। फिर फाइनली उस 29 में से सिर्फ 8 पास हो पाए थे, तो बेसिकली दैट मीन्स कि 197 रिपोर्टिंग में से सिर्फ 8 लोग बस पास हो पाए थे इंटरव्यू को। उसके बाद उसकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है कि मैंने अपने रिटन एग्जाम में कैसा किया, मैंने अपने SSB में कैसा किया, उसकी दोनों को कॉन्ग्रुएटेड मार्क्स निकाल के हमारी एक रैंक बनती है, और उस रैंक के हिसाब से मुझे NDA में एंट्री मिलती है। वहाँ फिर मुझे 3 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है, 2 साल तक तो नॉर्मल सबके साथ में ट्रेनिंग चलती है, लेकिन जब लास्ट ईयर आता है उस लास्ट ईयर में हमारा सर्विस स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाता है। लाइक अगर मैं आर्मी का हूँ, अगर मुझे शिफ्ट के बारे में पढ़ाएंगे तो कुछ फायदा है नहीं, लेकिन अगर मैं गन के बारे में पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा है
जी।
तो लास्ट ईयर में मुझे गन के बारे में पढ़ाया जाएगा, एयरफोर्स वालों को प्लेन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, नेवी वालों को शिप के बारे में पढ़ाया जाएगा। जब 3 साल खत्म होता है उसके बाद हमें अपने स्पेसिफिक सर्विस इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। जैसे मैं IMA गया, वहाँ पे फिर अगर मैं छोटे से गन के बारे में पढ़ रहा हूँ NDA में, IMA आके मैं उसके बड़े रूप को पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं AK-47 के बारे में, AK-47 इज अ गन, NDA में पढ़ा, अब AK-47 को मुझे चलाना आ गया, अब मुझे उसको किसी को सिखाना है। मैं अगर जा रहा हूँ, अगर ऑफिसर बनाऊँ तो मुझे लोगों को कमांड करना है। मेरे अंदर फिलहाल 45 लोग हैं, मैं उनकी जिंदगी का जिम्मेदार हूँ, उनकी जिंदगी मेरी मुट्ठी में, मैं उनको जो बोलूंगा वो करेंगे, तो मैं उनको कैसे सिखाऊंगा, ये मैं IMA में सीखूंगा। और उसके बाद ये 1 साल की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फाइनली हमको कमीशन होने का मौका।
तो अब शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से, आपकी जो बेसिक क्लास 5th तक की आपका एजुकेशन कहाँ हुआ?
बेसिकली मैं जैसे बताया कि मैं गतौरा से बिलोंग करता हूँ, क्लास 1st, 2nd और 3rd मैंने किया है सरस्वती शिशु मंदिर जयराम नगर से
जी।
थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने किया है सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल जयराम नगर। फिफ्थ क्लास से मैंने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दिया, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में छत्तीसगढ़ में फर्स्ट था। फिर वहाँ से मैंने सैनिक स्कूल ज्वाइन कर लिया, और सैनिक स्कूल ज्वाइन करने के बाद हाँ कभी कभी मैंने एक भारत में सिर्फ एक और इंस्टीट्यूशन, उसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, वो है देहरादून में। वो ऐसा माना जाता है कि उसको हमारी भाषा में उसको मिनी NDA बोलते हैं, कि मतलब अगर मैं वहाँ चला गया तो मतलब मैं पक्का NDA जाके ही रहूँगा। लेकिन सैनिक स्कूल चूंकि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में फिलहाल, इसलिए ऐसा माना गया है कि सैनिक स्कूल के कॉम्पिटिशन ज़्यादा होते हैं। तो उसका प्रिपरेशन किया, ठीक है मैं पास नहीं हो पाया, मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं थी, लेकिन तब भी 7 साल वहाँ पढ़ाई की। फिर 12वीं में रहते रहते जब मैंने NDA का एग्जाम दिया तो रिटर्न तो क्लियर कर लिया था, बट SSB नहीं क्लियर कर पाया मैं। SSB मेरी भोपाल में थी उस समय, 33 SSB भोपाल। उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए, फिर से एग्जाम दिया, तो उसके बाद फिर हुआ।
क्लास 5th में आपने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलाया था, तो ये अचानक से कहाँ से आया कि मुझे सैनिक स्कूल ज्वाइन करना है?
बेसिकली अगर उस टाइम के एज की सोचे तो मैं उस समय 10 साल का था, और यू कांट इवन थिंक ऑफ योर लाइफ व्हेन यू आर एट एज ऑफ 10 years। सो इट वाज माय फादर हु टुक दैट डिसीजन, बिकॉज ही वाज अ टीचर, ही इज रिटायर्ड नाउ, एंड मैं घर पे अकेला हो जाता था, तो इसलिए मेरे लिए एक ऐसा इंतज़ाम किया गया कि मैं हॉस्टल में रह सकूँ। सो अगर हॉस्टल में रहना ही है तो आई शुड ज्वाइन अ स्कूल जो प्रोडक्टिव है। एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं वहाँ से पास आउट होता हूँ तो आई शुड बी अ प्रोडक्टिव मैन, आई शुड नॉट बी लाइक कि हाँ मैंने हॉस्टल में 7 साल निकाल लिए। आई थिंक नाउ व्हाट माय फादर थॉट दैट टाइम अराउंड 11 ऑड इयर्स बैक, कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव स्कूल विच आई कैन ज्वाइन। सो दैट वॉज द रीजन, इट वॉज नॉट माई डिसीजन, इट वॉज माई फादर डिसीजन आफ्टर ऑल, एंड देयर आफ्टर Now I do salute him that he took a good decision that day.
So basically, जो आपका आर्मी स्कूल का सफर है वो शुरू हुआ हॉस्टल के नाम पे।
हाँ, आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो शुरू हॉस्टल के नाम पे हुआ था।
जितने लोग सैनिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं क्या सबके सब आर्मी ज्वाइन करने का सोचते हैं?
बेसिकली जैसे जो लास्ट क्वेश्चन था आपका कि क्या सिक्स क्लास में मैं ऐसा था कि आई वुड हैव चूजन दिस करियर, आंसर इज नो बेसिकली। बिकॉज हम जब ज्वाइन करते तो हमको एक नॉर्मल, वो भी एक नॉर्मल स्कूल ही, बट दैट इज 50% ऑफ स्कूल और 50% ऑफ थोड़ा सा मिलिट्री का फ्लेवर। लाइक जैसे मैं हूँ, अगर मैं आर्मी में हूँ तो थोड़ी पीटी होगी, थोड़े गेम्स हो गए, थोड़े कॉम्पिटिशन्स हो गए, वो सारा चीज़ ऐड कर करके वो स्कूल का करिकुलम बनाया गया। स्कूल का बेसिक एम है कि अपने बच्चों को तैयार करना ताकि वो एनडीए ज्वाइन कर सके, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सके। बट हाँ, जब वो नाइन्थ में पहुँचे, जब वो टेंथ में पहुँचे और इलेवेंथ में जब फाइनल वो चॉइस आया कि वो पीसीएम प्लस बायो लेके जाना चाहते हैं या पीसीएम प्लस कंप्यूटर साइंस लेके जाना चाहते हैं, तब वो एक लड़खड़ाने का टाइम होता है कि वो फौज में जाना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप जाओ और आप जबरदस्ती आप फौज में ही जाओ। वो हमसे एक बार एग्जाम दिलाएंगे। जब मैं ट्वेल्थ में था तो मैं स्कूल की तरफ से एग्जाम दिया था जिसका एम है, अब ऐसी लाइफ कौन नहीं जाना चाहेगा जिसमें आप कमांड करते हैं, आपको पैसे से मतलब नहीं होती, आपको रेस्पेक्ट से मतलब होती है। इवन आज मैं अगर जाता हूँ, अगर मैं कमीशन हुआ हूँ तो आई डोंट नो मैनी पीपल बट माई फादर इज फेमस अमंग एवरी वन दैट हिज सन इज अ कमीशन ऑफिसर नाउ। एंड द थिंग इज वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप फौज ज्वाइन करें, आप जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसका प्रिपरेशन करिए, लेकिन साथ ही साथ स्कूल के रूल्स के हिसाब से आपको एक बार यूपीएससी एनडीए एग्जाम देना पड़ेगा।
तो क्लास फिफ्थ में आपने सैनिक स्कूल के एंट्रेंस की तैयारी की थी और जहाँ तक पता है कि वो एंट्रेंस उतना इजी भी नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ टफ एग्जाम।
यस,
क्लास फिफ्थ के लिए वो टफ एग्जाम है।
यस,
तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कैसे किए?
बेसिकली देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम क्लास फोर सेल्फ।
Okay.
My school started at 9 o'clock, 9:30. I used to leave my home at 7:30 around, and my father used to drop me at a coaching location. He was a good teacher who taught me maths. So just before, when I was preparing for this exam, and I was coming back from school, one of my classmates hit my bicycle from behind.
Okay.
And I fell down. I broke my right hand. एंड आई एम राइटिंग।
ओके,
सो क्रेज इतना ज़्यादा था, पता नहीं अब तो मुझे उतना क्रेज नहीं होता, बट क्रेज उस टाइम पे इतना ज़्यादा था। आई स्टार्टेड इवन राइटिंग फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड।
ओके,
एंड आई कैन नाउ राइट विथ माई बोथ हैंड्स इवन नाउ ऑल्सो। एंड अब वो क्या कहें कि मतलब किस्मत थी, बदकिस्मत थी, लक अनलक, सडनली आई डोंट नो। करेक्ट, वन मंथ एंड 11 डेज प्लास्टर खुलने के बाद आई फ्रैक्चर्ड माई राइट हैंड अगेन।
वाओ।
2nd January 2011 was my exam for Sainik School. 14 December 2010 my plaster got opened.
Okay.
And it was like it was in my forehand. So there was a small crack on my bone. So थोड़ा सा problem होता था लिखने में. So when the exam happened, when the D-Day came on 2nd of January, it was a cold winter morning. दर्द तो हो गई। सो आई स्टार्टेड विद माय राइट हैंड। जब राइट हैंड में दर्द होता, आई स्टार्टेड विद लेफ्ट हैंड। एंड माय फादर वाज लाइक, अब तो तू दो बार हाथ तोड़ चुका है, मेरे को तेरे से कोई भरोसा नहीं है, होगा नहीं होगा। एंड दैट टाइम आई रिमेम्बर हमारे घर पे न्यूज़पेपर कोई दूसरे वाले आते थे। एंड जस्ट घर के बगल में एक स्मॉल होटल टाइप ऑफ थिंग शॉप वॉज देयर, वहाँ पे वो न्यूज़पेपर आता था। एंड माय फादर इज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स, वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स। सो he went there, he saw that result. I don't remember my roll number, I think it was 39197.
Okay.
That time.
So
he just checked out that result, he asked for my number. I told him on his face, papa 39197. He checked from behind and okay. He did not say the first number, like the same like that movie Three Idiots when they were checking that results. So I finally looked at that piece of paper and I saw that roll number on that first number. मैंने बोला पापा ये देखो, ये first number पे ही आप देख नहीं रहे इसको। सो ही वॉज लाइक हो ही नहीं सकता, चल घर पे. और उसके बाद जिस एनवेलप पे मेरा एडमिट कार्ड आया था स्कूल से, उस एनवेलप के पीछे उसका रोल, मेरा रोल नंबर लिखा हुआ था. सो ही चेक इट अगेन और फिर से पहला, देन ही गॉट दैट कंफर्मेशन दैट हाँ मैं फर्स्ट आया हूँ. एंड दैट वॉज द होल ड्रामा दैट मैं उतना प्रिपरेशन किया और फाइनली द प्रिपरेशन फॉर लेट से अराउंड वन ईयर एंड 10 months गेव दैट रिजल्ट दैट डे.
अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज.
लेफ्टिनेंट रवि प्रकाश राठौर से मातृका साहू की बातचीत का पहला भाग आपने सुना अर्पा एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज के अंतर्गत. आज अभी तो रवि प्रकाश राठौर जी सिर्फ बिलासपुर के गतौरा से, जयराम नगर के सरस्वती शिशु मंदिर से अंबिकापुर के सैनिक स्कूल तक ही पहुंचे हैं. उनका आगे का सफर कैसा रहा, सुनते रहिए अर्पा रेडियो.
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा.